हुई, मैं एक उस जगह पे आई जहां औरत का दाखला ममनू था बेतुल मुकद्दस में, उस जगह पे खुदा ने मुझे इंतखाब किया, एक हुजरा दिया अपनी इबादत के लिए, नबी के हाथ पे मैं पली हूं और मेरा खाना अल्लाह की तरफ से आता रहा। इतनी अजमतें खुदा ने दे दी हैं, ये एक और अजमत मिल जाए, एक और अजमत मिल जाए बेतुल मुकद्दस में जनाब ईसा को में उसकी विलादत हो जाए। अभी ये सोचा ही था तो जनाब मरियम पर ये इल्का होता है कि या मरियम उखरजी मिन बैती फइन्हा बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा, ए मरियम मेरे घर बेतुल मुकद्दस से निकल जा, ये इबादत का घर है विलादत का घर नहीं। तवज्जो है, मेरे घर से निकल जा, ये इबादत का घर है विलादत का घर नहीं। जनाब मरियम निकल आई तो मैं सवाल ये करता हूँ खतीबाना, ए ईसाइयों मुझे बताओ, आओ हमारी तारीख पढ़ो, जिस बीवी को अपने घर से निकाल दिया उसके बेटे को इब्नुल्लाह कहते हो, और जिस बीवी को अल्लाह ने अपने घर से निकाल कर काबे में बुलाया, हमने उसके बेटे को कभी अल्लाह का बेटा नहीं कहा। और दूसरा दलील के यही मसीही जब आए जनाब रसूल खुदा से मुनाजरा करने के लिए, और ये मुनाजरा तब्दील हुआ है मुबाहले में, पहले मुनाजरा हुआ है कि जनाब ईसा के ये दावादार मानने वाले उसकी शान में गुलू करने वाले कहने लगे जनाब ईसा अल्लाह का बेटा है। रसूल खुदा ने उनके साथ मुनाजरा किए, तफसील में नहीं जाना चाहता, बाद में ये मुनाजरा तब्दील हुआ है मुबाहला में, तो खुदा की तरफ से एक आयत पढ़ी रसूल खुदा ने कि मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलकहु मिन तुराब, के ईसा की मिसाल अल्लाह के पास ऐसे जिस तरह आदम की मिसाल बराबरी किसमें, खलकहु मिन तुराब, दोनों को अल्लाह ने मट्टी से खल्क किया। तवज्जो कीजिएगा के ईसाइयों, अगर तुम्हारी दलील ये है कि जनाब मरियम का कोई शोहर नहीं था, जनाब ईसा का कोई बाप नहीं था, इस वजह से खुदा इसका बाप है, तो मुझे बता दो सही, आदम का न कोई बाप था न उसकी कोई माँ थी, उसे क्यों नहीं अल्लाह का बेटा कहते थे? अगर यही मंतिक है, यही आपकी बुनियाद है, यही अगर मबना है कि मरियम का कोई शोहर नहीं और जनाब ईसा का कोई बाप नहीं, तो अगर यही लाजिक है तो जनाब आदम को कहा वो अल्लाह का बेटा है, वो ज्यादा बेहतर लगता है, न उसकी कोई माँ है न बाप है। और ये खुदा ने जो आयत भेजी कि मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलकहु मिन तुराब, ये आयतें और काफी आयतें आई, जब वो नसारा के आलिम नहीं माने दलीलों के जरिए से कि जनाब ईसा को हम इब्नुल्लाह कहेंगे, तब प्रैक्टिकल में रसूल खुदा ने मुबाहले की दलील की है। तो जो मुबाहला पे मैं पढ़ना नहीं चाहता, कुछ नुकात बयान करके आगे निकल जाऊंगा इंशाल्लाह, बाद में जिक्र होते रहेंगे कि ये असबाब गुलू क्या रहे इस मुआशरे में, हर फिरके में असबाब गुलू चेंज है। ये ईसाइयों ने एक लाजिक और मंतिक बना ली कि जनाब ईसा का बाप नहीं, इस वजह से अल्लाह उसका बाप है। तो इस हिसाब से देखा जाए, जब दलील की जबान न माने तो रसूल खुदा ने अमली प्रैक्टिकली हिसाब से उनके सामने आए और दलीलें बयान की। रसूल खुदा मुबाहले के लिए, सबने सुना हुआ तवज्जो है, सबने मुबाहला सुना हुआ है रसूल खुदा के हिसाब से, मगर उस मुबाहले में एक नया नुक्ता बयान करना चाहता हूँ जो बंदे हकीर की तहकीक है, और इंशाल्लाह जो पुराने बैठे हैं उन्होंने भी मजलिस से सुनी होगी मगर ये चीज नहीं सुनी होगी। तवज्जो कीजिएगा कि मुबाहला एक ऐसी जंग है, एक ऐसा मैदान हिज्ब था कि जिसमें कई अजमतें बयान हुई हैं। तवज्जो कीजिएगा, रसूल खुदा मैदान मुबाहला में जब जा रहे, नुक्ता आपके हवाले कि रसूल खुदा ने किसी साहबी के घर में से एक बंदा नहीं लिया, तवज्जो है, साहबी के घर में से कोई एक बंदा नहीं लिया, और अली के घर में से किसी को नहीं छोड़ा, सबको उठा लिया, सबको उठा लिया मैदान मुबाहला की तरफ चले। तो एक सवाल होता है कि रसूल खुदा किसी सहाबी को क्यों नहीं लेके गए, तो किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे, वो शायर खुद तसव्वुर में बैठ के कहता है कि एक दिन बड़े अदब से तसव्वुर में बैठकर मैंने कहा रसूल से हाथों को जोड़कर, कहिए रसूल आप बेवक्त मुबाहला क्यों जा रहे हैं अपने सहाबा को छोड़कर, ہمراہ اہل بیت کے ان کو بھی لے جائیے